month of groceries in the Philippines, or 60 liters of gas in India. So, send all the love with a $0 CIBC transfer fee, always. When you use CIBC Global Money Transfer, visit cibc.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC. Ambitions made real.
Teletime Electronics, LEDs और home appliances की hottest और branded range के साथ 0% finance, guarantee और lowest prices और free delivery in GTA. तो इंतजार कैसा? अभी विजिट करें Teletime Brampton, 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke, 1770 Albion Road या 9909 Markham Road. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرونکس
سامعین ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ سب 5:26 اور 26 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور وقت ہوا ہے آگے پوری دنیا کی سیر کروانی مینس کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے بٹالہ سپر مارکیٹ نے بٹالہ سپر مارکیٹ یہ آپ کو ملتی ہے 211 ہی ہے نا 200 211 کہاں سے آپ نے کریے 200 مارکم روڈ اسکاربرو کے علاقے میں مارکم اینڈ ایگلنڈن کا میجر انٹرسیکشن بنتا ہے یہ اور سب ہر چیز پہ پوری لسٹ میرے پاس ہے تو ہر چیز پہ وہاں سیل لگی ہوئی ہے ایسٹ اینڈ میں رہنے والوں پہنچ جائیے صاحب بٹالہ سپر مارکیٹ پہ اور سیل کا فائدہ اٹھائیں 416-264-3111 ان کا فون نمبر ہے 416-264-3111 ان کا فون نمبر ہے اوپن مائک کیفے سب یہاں پر بھی آپ جائیے خود بھی جائیے اپنے دوست احباب کو لے جائیے اپنے فرینڈس کو اپنے گھر والوں کو لے کے پہنچیے اوپن مائک کیفے پہ اسپیشلی اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی پارٹی بھی کرنی ہو اور وہاں جا کے آپ پہلے سے بک کرا لیں آپ اوپن مائک کیفے میں 30 آئٹمس فار 30 ڈالرز یہ آپ کو ملے گا اوپن مائک کیفے پر اور اگر آپ نے دعوت کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے 30 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو بلانا ہو تو صاحب منیمم 30 کا آرڈر ہے 8 آئٹمس فار 9.99 فار 8 آئٹمس اوپن مائک کیفے 1310 ڈنڈاس اسٹریٹ ڈنڈاس اینڈ ڈکسی کے کارنر پر ان میں سے ساگا 416-526-6800 ان کا فون نمبر ہے ڈاکٹر فیاض قریشی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں فیملی ڈینٹسٹری اورل سرجری کاسمیٹک ڈینٹسٹری سیڈیشن ڈینٹسٹری اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نو پرابلم کم آن اوور ویل لک آفٹر یو اسپیک یور اون لینگویج آپ کی اپنی زبان بولتے ہیں مساگا اور اسکاپر میں ان کے آفیسز ہیں کلینکس اور ایک نمبر فون دیا تو میں آپ کو باقیہ کے فون آپ خود ان کو فون کر کے لے لیں 9052325678 ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر ہے شریف صاحب اس کے ساتھ ہی ہم اب بھی چلتے ہیں آپ کو کہاں پہ لے جائیں گے ہم وہی جی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر رمضان میں بھی نہیں چھوڑ دی شاہ جی آپ ملک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسی ہیں آپ
وعلیکم السلام یعنی ماجد بھائی دو دن میری آپ خربوں کا ٹائم کھا گئے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں تم جو ہے جان نہیں چھوڑ رہی ہو مطلب ہے واٹ از دس گوئنگ آن اچھا آپ جیسے بندے جو ہے نا ماجد بھائی
جو چھوٹا پوتا ہے نا آپ کا جو لاڈلا ہے
مٹی ہے اس کا نام
الیاس نام ہے اس کا تو وہ کچھ کام کرے گا نا تو اس کو پوچھیں گے بھائی کہ why did you do that? He says, because I want to. इसके आगे आप क्या कर सकते हैं?
It's my choice.
Yeah,
it's my choice.
Why did you do that? Because I want to. Oh, okay. Sir, sorry, sir. Sorry,
छेड़ने के लिए आपको.
Sorry, sir. आपको I ask you this question. Next time I won't ask you this question.
अच्छा, रमजान में ना माजद भाई खास तौर पे ये मैसेज है.
हैं
छोटे बच्चे और हस्बैंड्स को छेड़ने का भी गुनाह मिलता है. रमजान में छोटे बच्चों को और हस्बैंड्स को छेड़ने का गुनाह मिलता है. बिल्कुल रमजान में हराम है ये दोनों चीजें. बिल्कुल
आप इसको फॉलो कर रही हैं?
हाँ जी बिल्कुल.
मैं
आज वहीदा जी को आज आपने मैसेज दिया.
मैंने ताहिर साहब से पूछना ही है.
हाँ, क्या आप ताहिर साहब से पूछे और वहीदा जी को ये मैसेज.
कल ही आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि मैंने उनको कहा कि भागो जाओ जाके वहां डॉलर स्टोर से वो मैट्स लेके आओ.
नहीं नहीं, भागो जागो मैंने नहीं कहा. मैंने कहा भाई ये
दौड़ के जाओ.
हाँ, खराब कर दिया ये ग्लास का टेबल जो है.
दौड़ के जाओ ये कहा ना आपने.
हाँ जी हाँ जी,
वो बेचारा इतना डरा हुआ है कि वो. हाँ, आपने कहा होगा सिर्फ जाओ तो वो
भाग के गया होगा. हाँ, तो कोई बात नहीं. वजह तो इतना मोटा है,
दहशतगर्दी जो ना ये
पतला हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है.
दहशतगर्दी जो है ना ये
वो तो हमारे खून में है ना पाकिस्तानी. वो आप जैसे मासूम जो है ना माजिद भाई, वो आजकल उनकी वो सही नहीं चल रही, इसलिए ये मैंने सुनाया है कि भाई इन मासूम जो है मियाओं के ऊपर भाई बिल्कुल तशद्दुद ना करें. बिल्कुल हराम ये रमजान के महीने में. वो एक मियां बीवी जा रहे थे ना, तो एक लड़का भागा भागा उनके पास आया, तो लड़के से उसने पूछ लिया. उसने कहा कि भाई साहब आपने देखा है इधर काले कपड़ों में एक लड़की भागते हुए? तो वो जो आपकी तरह का मासूम कराची का था. अब उसने तो सारा एक्सप्लेन कर दिया. उसने कहा हाँ हाँ, वही लड़की काले कपड़ों वाली जो है वो शोल्डर से नीचे उसका वो शर्ट जा रहा था और उसके नेल्स जो थे वो बने हुए थे और उसके जो बाल थे वो डाए हुए हुए थे और उसने जो है 6 इंचेस की हील पहनी हुई थी और पर्स उसके पास प्राडा का था. तो बीवी ने कहा बस भाई बस.
एक नजर में सारी एक नजर में सारी.
हाँ, उसको समझ में आ गया है, वो भाग गई है. फिर उसने कहा भाई साहब वो इधर से भाग गई है. तो वो कहती है तुम घर चलो, मैं तुम्हें जो है ना जहरीला साग और जहरीली भिंडियां खिलाऊं. तो भाई इस तरह का कोई तशद्दुद नहीं करना इन मासूम कराची के मर्दों के ऊपर. ठीक है जी, चलो जी. अच्छा जनाब, दो दिन खरबे नहीं आई तो आप लोगों के बड़े मैसेजेस आए और आपने कहा जी क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर है? और जो है जनाब चक्कर कुछ भी नहीं था. यहाँ पे कुछ रमजान से स्पेशल रिलेटेड जो है कोई इंटरव्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से, और एक तो फंड रेजर भी था. राइट, तो ऐसे है. अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय हेरिटेज साउंड्स. आपको पता ही है कि अब ये जून के महीने में आ रहा है, लेकिन उसमें एक सिंगर जो है वो है खान साहब. बड़ा ही जबरदस्त है वो, जून 16 को गाएगा. तो अभी अर्ली बर्ड टिकट्स जो है वो चल रहे हैं, आप मार्च 31 तक ले सकते हैं. अगर आपको सस्ता लेना है तो आप ले सकते हैं और आप जो है फिर जाके उनकी गायकी जो है उसका एंजॉय का मजा लें. ठीक है जनाब. इसके अलावा कल टुमारो इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क जो है उसका हमारे साथ फंड रेजर होगा. तो आपने 3:30 हमारे साथ जुड़ जाना है. 3:30 से लेके हम 5:30 5:45 तो आपके जो भी कोई अतियात और जो भी आपके जकात है वो आप दे सकते हैं. कल हमारे साथ आफ्ताब रिजवी साहब और परवेज साहब यहां पे होंगे. आप उनसे बात भी कर सकेंगे क्योंकि आप वो बताएंगे अपने ऑपरेशन के बारे में कि कहां कहां चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं. ठीक है जी. और जनाब इसके अलावा आपको पता ही है कि रमजान चल रहा है तो बड़े जबरदस्त खाने जो हैं जो आप एंजॉय का मजा ले सकते हैं वो है नानन कबोब. नानन कबोब पे आप जाएं प्लीज. यहां पे बिल्कुल हल्के मसाले में चीजें बनाई होती हैं जो कि हर कोई खा सकता है. दे आर लोकेटेड एट 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3 में से सागा, और इनका नंबर है 9052829797 इनका नंबर है. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो देखो पैन की कुछ हो रहा है. अच्छा मेरे और आपके साथ तो ये हुए ना, तो हम तो कहेंगे हाँ जी ठीक है, अब हम तो आम बंदे हैं तो आप हमारे साथ तो ये मजाक कर सकते हैं. ट्रूडो साहब के साथ जी डीप फेक एडवर्टीजमेंट उनकी जी चल रही थी यूट्यूब पे. आई मीन कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन.
वैसे ये अगर कोई सीधा साधा बंदा देखे
हाँ, हाँ, तो वो मान जाए, बिल्कुल मान जाए,
मान जाएगा, वो
मान जाएगा,
जरूर मान जाएगा कि वो तो यस हाँ, ये इन्होंने इनकी अपनी आवाज है, लोगों में बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं ये
हाँ,
तो इसका मतलब है कि
और वो सारी फाइनेंशियल जो थी वो बातें वो कर रहे थे तो लोगों के तो फाइनेंसिस बड़े टाइट हैं
हाँ,
तो अगर किसी को समझ में ना आ रहा होता तो वो. बहरहाल जी वो इसकी हो गई फौरन शिकायत जैसे ही कि जी ये डीप फेक. आपको पता ही ना डीप फेक क्या होता है? डीप फेक ये होता है कि बॉडी किसी और की होती है या कुछ जो चीज ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے، شکل آپ لگا دیتے ہیں یا بات وہ بندہ کچھ اور کر رہا ہے اور آپ اس کی جو ہے لینگویج چینج کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے ہیلو ہاؤ آر یو تو آپ جو ہے آگے سے کہہ رہے ہیں ناصد رہو ورنہ مار کھائیں گا، ہے تو اس طرح کا سین ہوتا ہے، دس از کالڈ ڈی فیک. تو یہ چل رہی تھی جو یو ٹیوب پہ، بہرحال گوگل جو ہے اس نے فوراً جو ہے یہ نیچے اتاری ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ گوگل جو ہے وہ کمپنی ہے، پیرنٹ کمپنی ہے یو ٹیوب کی، اور انہوں نے ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل ہمارے جو یوزرز ہیں ان کی جو سیفٹی ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اور ہمارے بڑے اسٹرکٹ قسم کے پالیسیز ہیں، یہ اسکیمز جو ہیں اس طرح کے ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کرتے. ہم نے فوراً نہ صرف یہ ایڈورٹائزمنٹ نیچے اتاری ہے بلکہ جو ایڈورٹائزر ہے اس کا اکاؤنٹ بھی ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے یو ٹیوب پہ. تو پائن اب سوشل میڈیا کمپنیز جو ہیں وہ
دیکھیں نا، وہ ایک ٹورانٹو کا ریزیڈنٹ ہے، کئی لوگ بلینز آف ڈالرز پیپل ہیو لاسٹ بلینز. یہ بیچارہ جس نے 12,000 ڈالر اپنے سیف کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو اتنا کنوینسنگ لگا یہ ٹروڈو صاحب کی اسپیچ کہ اس نے جا کے وہ 12,000 ڈالرز انویسٹ کر دیے. دے اسٹارٹ وتھ 250 ڈالرز، آہستہ 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 12,000 کے 12,000 پورے کے پورے جب لے لیے اس کے، تو جب جا کے اس نے کیش کرنے کی کوشش کی وہ شوئنگ 40,000 ڈالرز ان ہز اکاؤنٹ، مگر جب کیش کرنے کی کوشش کی پتا لگا وہ تو فیک ہے، تو کچھ ہے ہی نہیں،
وہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے، آپ کو ایک اور بھی بڑی خبر ہے جو ہم کور تو ادھر نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو کرپٹو کا کنگ تھا بہت بڑا، اس کو بھی آج انہوں نے پکڑا ہے. تو یہ
25 سال قید ہو گئی،
25 سال قید اس کو ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، بڑی سمجھداری سے آپ لوگ جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے اپنے کوئی فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں ان سے پوچھ کے یہ کریں. اچھا جناب، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اب کینیڈین رینٹرز بل آف رائٹس جو ہے وہ ایک لے کر آ رہی ہے. اس کی انفارمیشن جو ہے ٹروڈو صاحب نے خود دی ہے، وینکوور کے اندر وہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو لینڈ لارڈز ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو، ٹیننٹس کو جو کہ ان سے بہت ہائی پیمنٹس لیتے ہیں اور رینوویشنز کرتے ہیں، یعنی کہ رینوویشن کے نام پہ ان کی ایویکشنز کرتے ہیں اور ان سے جو ہے بہت انفیئرلی اپنا رینٹ ہائی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹروڈو صاحب نے کہا کہ جو ینگ کپلز ہیں جو کہ اپنی فیملی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب رینٹس اتنے ہائے ہیں تو ہم پیسے کیسے بچائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اب جب کوئی آدمی رینٹ پہ گھر لے گا تو لینڈ لارڈز جو ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ ان کا پراپرٹی کا رینٹل پرائس جو ہے وہ کیا ہے. تو 2/3 آف ینگ کینیڈینز جو ہیں وہ اپنی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لارج پورشن آف دیئر سیلریز جو ہیں یا کہ انکم جو ہے وہ رینٹ کے اوپر یوز کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج ٹروڈو صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ 1 اپریل سے کاربن ٹیکس انکریز ہونے جا رہا ہے، تو وہ بہت سارے پریمیئرز جو ہیں اس کے بہت زیادہ خلاف بول رہے ہیں. تو ٹروڈو صاحب نے کہا جی کہ میں پریمیئرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کاربن ٹیکس آپ اپنے جو ہے پروونس میں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا خود کا کیا آئیڈیا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو کیسے ایڈریس کریں، تو آپ مجھے آئیڈیاز دیں.
ہاں مطلب سولوشن بتائیں.
ہاں سولوشن بتائیں.
صرف یہ کہنا کہ نو نو یہ بہت خراب ہے کاربن ٹیکس وغیرہ، اور جتنے بھی پریمیئرز ہیں وہ دے آر سیئنگ اٹ بٹ دیٹس پولیٹیکل ٹاک. تو ٹروڈو صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹو بتائیں،
سولوشن بتا دو.
سولوشن
بتا دیں. بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ جو خبر ہے یہ آئی تو 2 دن پہلے تھی اس کے اوپر، گلوبل افیئرز کینیڈا کے اوپر، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اینڈ 2 دن سے ہماری خبریں نہیں ہوئی تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر دس ود یو. فارن افیئرز منسٹر جو ہے ہماری میلانی جولی صاحبہ، انہوں نے اپڈیٹس دی ہیں کیونکہ لوگ بے تحاشا پریشان تھے. کوئی تقریباً 3,000 کے قریب کینیڈینز جو ہیں وہ ہیٹی کے اندر ہے، اور ہیٹی میں آپ کو پتا ہی ہے کہ کمپلیٹ گینگ وار چل رہی ہے اور لالیسنیس ہے وہاں پہ، اور بالکل جو ہے کمرشل فلائٹس بھی کینسل کر دی گئی ہیں. اصل میں تو یہ 2 سال سے چل رہا تھا قصہ، لیکن اب 1 مہینے سے بہت زیادہ بھڑک گیا ہے. تو اب یہ جو کینیڈین گورنمنٹ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کیسے اب ان کو باہر نکالیں گے، اچھا کینیڈین گورنمنٹ نے گلوبل افیئرز کینیڈا کی سائٹ کے اوپر جو ہے ساری ڈیٹیلز ڈالی تھی کہ کون کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ 3,000 میں سے 300 لوگوں نے صرف کینیڈین گورنمنٹ کے لیے اسسٹنس مانگی تھی، اور کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو سارا پروسیجر بتایا تھا کہ آپ کیسے ہماری اسسٹنس لے سکتے ہیں. البتہ صرف ان میں سے جو 30 تھے وہ ٹریول ریڈی تھے، یعنی کہ وہ ٹریول جو ہے کرنے کے لیے وہ تیار تھے. میلانی جولی نے کہا جی کہ ہمارے وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سچویشن بہت خراب ہے، ایئرپورٹس نان فنکشنل ہیں، تو کینیڈینز کی سیفٹی ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. البتہ ان کو ایئر لفٹ جن کو کیا جائے گا اس کے اندر پری ریکوزٹس ہیں. اب وہ پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ویلڈ کینیڈین پاسپورٹ ہونا چاہیے، پھر जो पीआर और सिटीजन विदाउट वैलिड पासपोर्ट या के जो फैमिली मेंबर्स हैं कैनेडियंस के वहां पे रह रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको अपने अरेंजमेंट्स खुद करने पड़ेंगे। सिर्फ जो लोग जिनके के पास वैलिड कैनेडियन पासपोर्ट्स हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा कनेडा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। और वो कहते हैं जी कि हम अपडेट्स कर रहे हैं और बहुत सारे फोन नंबर्स इन्होंने डाले हुए हैं ग्लोबल अफेयर्स कनाडा पे, अगर आप जाएं तो वहां पे हेटी से रिलेटेड जो एक सेक्शन है उसके में, तो उस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपडेट्स जो हैं वहां पे ले सकते हैं। मजीद भाई, अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो है उन्होंने कहा कि ये नॉनसेंस है बिल्कुल, और आरफा भाजी ने भी उसका जिक्र किया कि जो सोशल मीडिया के जो पोर्टल्स हैं उनको ये कह रहे हैं चार स्कूल ओंटेरियो के स्कूल बोर्ड्स जो हैं, टोरोंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, पील, टोरोंटो कैथोलिक एंड ओटावा कॉल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो हैं, ये जो हैं चार बोर्ड्स, इन्होंने कहा जी कि हम एक्शन इनके लिए लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हुए फोर्ड साहब ने एक तो नॉनसेंस कहा और उन्होंने कहा जी कि जो असल काम है एट हैंड उससे ये डिस्ट्रक्शन मांग रहे हैं। इन बोर्ड्स ने तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स का लॉसूट जो है स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है और वो कह रहे हैं जी अलेजली ये बड़ा नेगेटिवली हमारे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको डिसरप्ट ये कर रहे हैं। फोर्ड साहब ने इसके साथ डिसएग्री किया और उन्होंने कहा जी कि आप टीचर्स का फोकस जो है मैथ्स, रीडिंग, राइटिंग पे होना चाहिए क्योंकि इस चीज की हमें जरूरत है और सारे रिसोर्सेज जो है उनको आप अमल में लाएं और बच्चों को अच्छी तालीम के ऊपर आप जोर दें और आप
कॉन्सेंट्रेट
ऑन स्टडीज और वो स्टीम जो सिस्टम है उस पर। और वो कह रहे हैं जी कि आप कहां से, आपके पास इतने लंबे आपके पास के बोर्ड्स के पास पैसे हो गए हैं कि आप लॉयर्स को साल वो आपकी फाइट करने के लिए देते रहेंगे। ये जो टेक कंपनीज हैं ये तो दे आर लोडेड विद मनी, इनके पास बेतहाशा पैसा है। तो आप मतलब उनका कहने का मतलब था जरा अकल के थोड़े ना कर लो ये। इसके अलावा जरा ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने आज कहा है कि ये अब इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ गया कि हम $310,000 जो है एक न्यू स्पेस जो है उसके ऊपर हम कर रहे हैं वहां पे जो पार्लियामेंट हिल है उसके नहीं लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जो है ऑन्टेरियो की उसके ऊपर आप, इसके ऊपर क्रिटिक्स ने बड़ा ज्यादा जो है वो एतराज किया है। जो फोर्ड साहब हैं, फोर्ड साहब ने ये कहा था जी कि हम एक अब ऐसी एक कमरा बेसमेंट में लेकर आना चाहते हैं लेजिस्लेटिव बिल्डिंग की कि जिसमें आप जो है जर्नलिस्ट जो है ये नहीं है कि बेतहाशा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक फॉलो अप पूछेगा। अब जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं जी ऑलरेडी जो वहां पे कमरे हैं जहां पे के टेक्निकल ब्रीफिंग्स चलती हैं ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि जो है वो चलती हैं उनकी ऑपोजिशन वालों की भी और भी बहुत सारी जो है वहां पे कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, लेकिन ये होता है हाँ वहां पे अलबत्ता यहां पे ये जरूर होता है कि जर्नलिस्ट वहां पे बेताचा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी एक नया कमरा बनाने के बजाय आप जर्नलिस्टों को बोल दो कि हम जो है आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ज्यादा अपने कमरे नहीं बनाने, ज्यादा अपने क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर दो उनको, एक कमरा स्पेशल बनाने की उसके लिए क्या जरूरत है। तो और इसके ऊपर ये जो है $310,000 आप यूज कर रहे हैं, ये तो बिला वजह का है, कुछ इसकी जरूरत नहीं है। यानी लेजिस्लेटिव बिल्डिंग में और कोई कमरे है नहीं कि जिसको आप स्पेयर कर सकते थे,
ओनली मनी।
हाँ ओनली मनी। तो बरल जैसे कैनेडा पोस्ट जो है जी वो रमदान से रिलेटेड अब बड़ा खूबसूरत जो है वो लेकर आई है अपना स्टैम्प्स नए लेकर आई है जो कि सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर और ईद उल अदा। इसके अंदर उन्होंने ट्रेडिशनल जो है वो जो मिठाइयां हैं अरब्स की खास तौर पे जो सेमोलिना से बनी होती हैं और उसके अंदर इट इज फ्लेवर्ड विद रोज एंड ऑरेंज ब्लॉसम वाटर एंड मखलब उसको कहते हैं, इसके अंदर जो है नटी जो है वो स्पाइसेस डाले हुए होते हैं या कि कभी नट्स भी डाले होते हैं जैसे कि वॉलनट, पिस्ताचियो, डेट्स वगैरह। तो ये सारी जो है डेकोरेटिव सारा वो बड़ा नजर आ रहा है और एक वुडन जो मोल्ड है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है और फिर बड़ा खूबसूरत। तो ये उन्होंने मुसलमानों के लिए ईद उल फितर और ईद उल अदा के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स जो है वो निकाले हैं। आज इंटरपोल की जनाब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेतहाशा बढ़ गई है। इसका जिक्र जो है आज जो इंटरपोल के हेड हैं बल्कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं जर्गन स्टॉक, उन्होंने इसके ऊपर बात कही है और उन्होंने कहा जी कि ये क्रिमिनल्स माजिद भाई सोचें कि कितना कमा रहे हैं, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स they are earning because of this drug and human trafficking. इन्होंने कहा जी कि इंटरपोल ने आज और इनके ये जो हेड है जुर्गन साहब उन्होंने कहा जी कि ये ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है ग्रुप्स जो हैं यानी एक ग्रुप इसमें से आप सोचें जो एक सबसे बड़ा जो ग्रुप है सिर्फ दैट वन अलोन अर्न्स 50 billion यूएस डॉलर पर ईयर.
वाओ
भाजन साड़ी भी कोई डील कराओ उसके नाल पाकिस्तान का कर्जा उतरे. नहीं नहीं आई एम जस्ट किडिंग. अच्छा तो ये यानी इतना ये गंदा काम है वो कह रहे हैं इतना खराब काम है ये कि ये इस तरह ये एक इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है ड्रग्स भी हैं. ड्रग्स का बिजनेस है इसके अंदर बहुत बड़ा और वो भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है. और फिर सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं है आर्म्स है इसके अंदर आर्म्स की जो इलीगल डील्स होती हैं वो. तो यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्म्स एंड ड्रग्स ये सारा वो चल रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये सारे का सारा साउथ ईस्ट एशिया में करें. कहते हैं जी हमने इंटरपोल ने जो ऑपरेशन एशिया के अंदर किया था उसमें हमने 3,500 लोगों को अरेस्ट किया है. 300 million यूएस डॉलर्स जो है इलीगल फंड्स जो है उसमें हमने कैप्चर किए थे 34 कंट्रीज में इन 2021. हजारों ही लोगों को ऑनलाइन जो है ल्योर करके क्रिमिनली ट्रैफिक किया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर. इसके अलावा 120,000 से 100,000 और 120,000 के बीच में लोग जो हैं उनको जो है इलीगली वो जो कंपाउंड्स इन्होंने बनाए हुए हैं म्यांमार में कंबोडिया में स्लेव लाइक कंडीशंस में रखा जाता है उन्हीं के थ्रू जो है ड्रग्स स्मगलिंग करवाई जाती है. वो बेचारे लोग जो होते हैं वो जाहिर स्मगलर तो नहीं होते वो तो बेचारे नौकरियां तलाश करने इन मुल्कों में निकले होते हैं वो पकड़े जाते हैं साला साल उनकी कोई सुनवाई नहीं होती वो जेड़ों में सड़ते रहते हैं. इसके अलावा इनकी आर्म्स की डील्स होती हैं. तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि चल रहा है जिसको कि बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीटली इंटरनेट इंटरपोल वाले. लेकिन जाहिर है कि हौले हौले वो कह रहे हैं जी हमको सक्सेस मिल रहा है पूरा तो नहीं सिस्टम खत्म कर सकेंगे. हाँ तो हौले हौले अल जजीरा की आज ये रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक आज हिजबुल्ला ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर और ये इनके जो रॉकेट्स हैं इन्होंने हिट किया है क्रियत समोना एरिया का जो कि बिल्कुल ही इसराइल का बॉर्डर एरिया है क्योंकि इसराइल ने इससे पहले जो है लेबनान का जो सदर्न विलेज है अल हबरिया उसके ऊपर अटैक्स किए थे जिसके के अंदर 7 लोगों की डेथ हो गई है. ये 7 लोग जो थे पैरामेडिक सेंटर के में काम कर रहे थे और ये वॉलंटियर्स थे. हिजबुल्ला ने आज जो है 30 रॉकेट्स जो हैं वो मारे हैं इसराइल के ऊपर. अब वो ठिकानों पे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं लेकिन बहरहाल इसराइल की जो मिलिट्री है उसने आज कहा जी कि ये इमरजेंसी सर्विसेज वालों ने कि फैक्ट्री एक ओनर था फैक्ट्री वर्कर था सॉरी वो इसके अंदर जो है वो मरा है. तो यानी 30 रॉकेट्स किधर मारे इन्होंने भाई कि वो कहते हैं कोई इतना हमारा नुकसान भी लेकिन क्योंकि उनके पास वो जो है ना वो रॉकेट डिफेंस सिस्टम जो है वो ऐसे कवर दे देता है इनको ना तो उससे ज्यादा इनको नुकसान नहीं होता है. तो ये इसराइल के पास बड़ी जबरदस्त डिफेंस सिस्टम जो है ना वो है तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता. वाशिंगटन पोस्ट की जनाब ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक एनेट शलीन जो है मिडल ईस्ट एनालिस्ट जो थी ऑन ह्यूमन राइट्स जो कि काम करती थी यूएस गवर्नमेंट में उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है कि जो कुछ जुल्म गाजा के अंदर हो रहा है और ये अब लेटेस्ट ऑफर है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जिन्होंने कि अपनी पोस्ट छोड़ी है. और इन्होंने कहा जी कि जिस वक्त गाजा के अंदर जो डेथ टोल है 32,490 पे पहुंच गया है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कह रहा है कि वहां पे फैमिन जो है अब पैदा हो गया है तो मैं मेरे लिए ह्यूमन राइट्स के पोस्ट के ऊपर रह के काम करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है. इससे पहले जो थे जॉर्ज पॉल डायरेक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स थे उन्होंने भी अक्टूबर में लास्ट ईयर जो था वो कर दिया था रिजाइन. उन्होंने कहा जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं बिल्कुल नहीं चल सकूंगा. उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल थे तारिक हबाश पैलेस्टीनियन अमेरिकन थे उन्होंने भी और ये इनको खास तौर पे बाइडेन साहब ने ही अपॉइंट किया था उन्होंने कहा जी मैं ज्यादा इनके साथ अब नहीं चल सकता. उन्होंने भी जनवरी के अंदर जो है वो रिजाइन कर दिया था. तो अब ये तीसरी यूएस डिपार्टमेंट की जो बंदी हैं इन्होंने किया और उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल के जो हमें पता नहीं है कि ये इसराइल की जो वायलेशंस हैं ये हमें अपना काम करने देंगी ह्यूमन राइट्स के रेल में कि नहीं. यूएस जो है अभी तक कह रहा है कि जी हमको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसराइल जो है इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ को वायलेट कर रहा है. पायन मतलब है अंकल सैम व्हाट इज दिस 32,000 बंदे मार देते हैं उन्होंने वो क्योंकि आपको पता ही है कि यूएस लॉज जो है वो प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी ऐसे कंट्री को अपने आर्म्स नहीं देने हैं जहां पे कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं. और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली कह रही है कि जी इसराइल कोई वायलेशंस नहीं कर रहा जबकि हकीकत यह है कि क्रिटिक्स जो है अमेरिका में कह रहे हैं कि वेल डॉक्यूमेंटेड इसराइली वायलेशंस जो हैं वो उनके सबूत हैं हमारे पास. बहरहाल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ਪੈਨ ਇਸ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਾਜਦ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 62 ਈਅਰ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਡੋਇਚੇ ਪੋਸਟ, ਉਨਕੀ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੇਲ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੇਲ ਕਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਡਾਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪਕੀ, ਵੋ ਡਾਕ ਫਲਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਵੋ ਡਾਕ ਫਲਾਈਟਸ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੈਨੋਵਰ, ਸਟਟਗਾਰਡ ਔਰ ਮਿਊਨਿਕ ਸੇ ਆਜ ਆਖਰੀ 1.5 million ਲੈਟਰਸ ਜੋ ਥੇ, ਜਿਨਕਾ ਕੇ ਵੇਟ ਥਾ 53 metric tons, ਉਨਕੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਥਾ। ਜਰਮਨੀ ਕੇ ਅੰਦਰ 80% ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੋਤੀ ਥੀ ਵੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਥੀ ਔਰ 95% ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੋ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੜ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੋ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਅਬ ਹਮ ਤਿਆਰੋਂ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਪਲਾਈ ਕੀਏ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਣੇ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਸੇ, ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਥਕੇਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏਂਗੇ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਸਲਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ ਰੋਡੇ ਰੋਕੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਉਪਰ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨਿਊਰ ਸਪਰੇ ਕੀਏ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਚੁਕੰਦਰ ਮਾਰੇ ਉਨਕੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਅੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦੀਏ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਇਨਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਕਾ ਕਿ ਜੋ ਈਯੂ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਰੈਡ ਟੇਪ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚੀਪ ਕਿਸਮ ਕਾ ਸਮਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸੇ ਲੈ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਨਰਸ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਸ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਲਿਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਥੇ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਜੋ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੜਕੋਂ ਕੇ ਉਪਰ ਖੜੇ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਓਵਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਲਾਲ ਬਫੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ। ਫੈਸਲ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਜਾਏ, ਦੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਣੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਕਾ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਮੇ ਹੈ, 4141 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਕੇ ਉਪਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ 2294 ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਓਕਫਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਨਕੇ ਆਰਡਰਸ ਡਾਲਨੇ ਹੈ ਤੋ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਕੇ ਲਈ 9052323663 ਪੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਓਕਫਿਲ ਮੇ ਆਰਡਰ ਡਾਲਨਾ ਹੈ ਯਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੋ 9052262294 ਪੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਯੂਨੀਕ ਸਾਇੰਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਦਫਾ ਬਤਾਇਆ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੀ ਬੂਥੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੀ 2349 ਐਵਨਿਊ ਯੇ ਵੋ ਫਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਕੋ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੇ ਐਟ 6474584482 ਐਂਡ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਆਲ ਸਟੇਟ ਮੇ ਯੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਨਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇ ਆਪ ਐਟ 6472903773 ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਥੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੋ 6 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜਜਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਥੇ ਕਿ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜੋ 6 ਜਜਿਸ ਥੇ ਯੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇ ਯੇ ਹੈ ਜਸਟਿਸਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਕਿਆਨੀ, ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ, ਬਾਬਰ ਸੱਤਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਏਜਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਰਬਾਜ਼ ਤਾਹਿਰ, ਸਮਨ ਰਫਤ। ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾ ਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਕੇ ਉਪਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਥੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਤਾਰਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ इम्पार्शियल जुडिशियल पर्सन इस कमीशन के ऊपर लाने की जरूरत है, जैसे कि एक रिटायर्ड जज जिसकी कि अच्छी रेप्यूटेशन हो अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, जो कि सारी इसमें प्रूव करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा मैटर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कल कैबिनेट में पेश करेंगे, कल यानी फ्राइडे को, और वो कहते हैं जी कि ये बड़ा ही सीरियस मैटर है और प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है, और वो कहते हैं जी कि तमाम अदारे जो है उनको अपने फ्रेमवर्क में लेके काम करने की जरूरत है और किसी के साथ जो है इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जनाब प्रोब तो बनती है फैन, तो अब देखेंगे ये कमीशन जो है क्या करती है। आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है JUIF के चीफ, वो आज एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज्यादा आगे नहीं चल सकेगी, ये कलैप्स कर सकती कर जाएगी, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो रबर स्टैंप गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि मैंडेट इनका नहीं था, इसको बड़े सारे चैलेंजेस हैं और मुझे अफसोस है कि ये सारे का सारा मलबा अगर ये फेल हुए तो इन पॉलिटिशियंस के ऊपर आगे गिरेगा। इन्होंने कहा जी कि हम जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे जिन्होंने के इलेक्शन के अंदर एक गेम की है, और जो नेशनल असेंबली के अंदर जो बाय इलेक्शंस भी होने वाले हैं, कि जो सीट्स वेकेंट हुई हैं उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही हम प्रोविंशियल असेंबली जो खाली हुई हैं उसके अंदर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि रमदान के बाद April 25th से हम एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग ये जो रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, और ये हम शुरू करेंगे बलूचिस्तान से, उसके बाद जो है फिर हम जो है दूसरे सूबों में भी जाएंगे। वो कह रहे हैं जी कि PTI जो थे उनके साथ हमारे पहले बड़े इख्तलाफात थे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी वो इलेक्शन रिलेटेड, उसमें कोई वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है उनके स्टांस में बड़ी चेंज आई है तो हम उनके साथ मिलकर बैठ सकते हैं और हम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी, ये आज बातें मौलाना साहब ने की हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है जी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर, ताकि ना सिर्फ कस्टम्स को रेगुलेट किया जा सके बल्कि ये जो टेररिस्ट हैं इनकी मूवमेंट को भी कर्ट किया जा सके। आज अपने एक्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम काबुल को कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि आपकी जमीन जो है टेररिस्ट यूज कर रहे हैं और हाइड आउट उन्होंने बनाए हुए हैं और वो बड़े फ्रीली जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान जो है उसने बड़ी दफा अफगानिस्तान को कहा है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन आप कोऑपरेट चूंकि नहीं कर रहे हैं तो अब हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहां पे लाना पड़ेंगे ताकि हम गुड नेबर्स की तरह रह सकें, यहां पे ट्रैफिक जो है वो भी स्मूथली चले और लोग प्रॉपर वीजा और पासपोर्ट लेके अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए। ये आज कहा जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। इसके अलावा जनाब PTI जो है वो संडे के दिन से ये जो जुडिशियल ऑटोनॉमी है इसके लिए यानी कि जुडिशरी की आजादी के लिए जो है रैलीज निकालनी शुरू करेगा, और ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आज चेयरमैन जो हैं PTI के वो उनकी मुलाकात थी आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये आज मीडिया को बताई है, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने भी अपना मैसेज दिया है कि हम जो है जुडिशरी के साथ खड़े हैं, उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई है। बैरिस्टर गौर साहब का कहना था कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी जो है वो हम जो ये रैली अब निकाल रहे हैं उसके लिए वो इमरान खान साहब की डायरेक्टिव पे निकाल रहे हैं। आज अडियाला जेल में अथॉरिटीज ने कोई तकरीबन 11 लीडर्स और PTI की जो लीगल टीम थी उनको इमरान खान से मिलने की इजाजत दी। इन लोगों में बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, शेर अफजर मरवत, फैसल जावेद, जरताज गुल, आमिर न्याजी वगैरह जो हैं वो शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम एक लेटर भी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खान साहब के बिहाफ के ऊपर कि जी हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं लेकिन इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने अभी के लिए FIA को रोक दिया है कि आप किसी जर्नलिस्ट को भी जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस सिलसिले की जो पूरी की पूरी हियरिंग है वो पूरी नहीं हो जाती। ये 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, और उनके सामने केस था कि ये जर्नलिस्टों को बेतहाशा हरास किया जाता है उनका सिर्फ काम करने के लिए। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद जो हैं जो कि काउंसल हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा जी कि ये जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ बहुत उनके कामों में और उनकी प्रिवेसी के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि प्रिवेसी जो है वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या तस्वीरें बाथरूम्स में और उनके कमरों में लेना जो है वो जायज है, जिसके ऊपर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा जी कि ये तो FIA की आदत है कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज करता है और इस तरह के जो हैं वो काम करते हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके पास जो पावर है अंडर PICA सेक्शन 20 उसको नल एंड वॉइड कहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जी कि ये क्या जजमेंट जो है पूरी तरह से एनफोर्स की गई थी, तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, एक रूलिंग आई थी लेकिन इसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था कि नहीं। ऐसे है पाकिस्तान के अंदर जी जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अब कहा है जी कि मैं ज्वाइंट एक सिटिंग बिठाने वाला हूं दोनों पार्लियामेंट्री हाउसेज जो हैं, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट, इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। इसमें वो कहते हैं जी कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस होएगा, फिर उसके ऊपर जो है वो क्योंकि ये मैंडेटरी होता है अंडर आर्टिकल 56 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जब जो है वो अपनी प्रायोरिटीज जो हैं साल की वो बताते हैं, और जाहिर है कि इनको गवर्नमेंट जो है पूरी एक लिस्ट देती है कि वो किस पे बात करनी है। सेकंड, फिर नेशनल असेंबली का जो सेशन होगा वो अप्रैल 1 को है और वो तो जो है उसमें कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया जाएगा। थर्ड जो नेशनल असेंबली का सेशन होगा प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस के बाद, तो उसमें फिर लेजिस्लेशन लाए जाएंगे और उसको बड़ी फास्ट पेस पे पास करने की कोशिश की जाएगी, और जो फिर कमेटीज हैं वो फॉर्म की जाएंगी अप्रैल में ही, तो इनके एड्रेस के बाद ये सारा काम जो है ये शुरू हो जाएगा। नादरा के जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जी उनके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, क्योंकि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जीआईटी बिठाई गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों का जो डेटा है नेटा के डेटाबेस से वो चोरी हुआ है। तकरीबन 2.7 मिलियन पाकिस्तानी का डेटा जो था वो चोरी हुआ था। इस सिलसिले में जब जेआईटी की टीम ने बताया कि कौन कौन से लोग और क्या हो सकता है या हुआ है, उस सिलसिले में 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और उनको चार्जशीट भी किया गया है। ये सारी की सारी एक्शन जो थी इनिशिएट की गई थी अगेंस्ट डीजी टेक्निकल एंड डीजी नेटवर्क कराची और कुछ और लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो ये लोगों ने क्योंकि बड़ा इसके ऊपर एतराज किया था कि भाई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप कैसे ये दे रहे हैं इनको। और जनाब आपको पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो काफी गर्मा गर्मी में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक डेलीगेशन कल हेडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी खुरम आगा ये मिलने के लिए गए थे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी से। जो खुरम साहब हैं वो 2 दिन के दौरे पे हैं काबुल में, जहां पर उन्होंने ऑन गोइंग ट्रेड इश्यूज जो हैं उनके ऊपर डिस्कस किया। इसके अलावा खुरम आगा साहब ने उनको बताया कि भाई आपकी जमीन जो है जो टीटीपी यूज कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान में उसको भी रोका जाए। इसके अलावा इन्होंने और भी जो हैं बातें की कि जैसे पेशेंट्स जो हैं जो मरीज हैं जो अफगानिस्तान में जिनको इलाज चाहिए उनको कैसे लाया जा सकता है, पाक अफगान बॉर्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट और दूसरे इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं जी ये यहां पर बातचीत की गई। अच्छा जनाब आज द वायर की 2 स्टोरीज हैं इंडिया के ऊपर और दोनों ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। और एक तो जो स्टोरी है वो पॉलिटिकल स्कॉलर सुहास पल्शी का जो है उनकी बातचीत हुई है जो सीनियर एडिटर हैं द वायर के करण थापर साहब उनके साथ, और उन्होंने बड़ी ही खतरनाक बातें जो हैं वो की हैं अपने इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी कि ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है ये जो बड़े ही खतरनाक जो एक इशू सामने आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसमें के पता चला था कि जी बीजेपी जो थी वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही उसने इसके ऊपर कमाए हैं, तो उससे उस मुद्दे से लोगों की नजर हटाने के लिए उन्होंने ये इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जो है वो अरेस्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं जी कि सुहास साहब कहते हैं कि ये एक और चीज भी इंडिकेट करती है कि जो आने वाले इलेक्शन हैं लोकसभा के वो भी फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, जो कि एक बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि हिंदुस्तान आपको पता है अपने आप को क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये एक 28 मिनट का इंटरव्यू है और सुहास साहब जो हैं चीफ एडिटर हैं ऑफ स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक टेक्टिकल रीजन है इनके ये जो कुछ भी किया जा रहा है, और आपको ये बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि केजरीवाल के अरेस्ट के पीछे मेन मैसेज क्या है। इसके पीछे मेन मैसेज जो है वो ये है कि अगर हमने केजरीवाल जैसे पॉपुलर आदमी को पकड़ा है तो दूसरे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हु आर आउट ऑफ लाइन विद बीजेपी उनको भी पकड़ा जा सकता है और उनको भी सजाएं दी जा सकती हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस, और उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने बाउंड्री क्रॉस की, जैसे कि केजरीवाल साहब हर वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, तो अगर आपने बाउंड्री क्रॉस की तो आपके खिलाफ भी ये एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है सुहास साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो डायसेंटिंग वॉइसेस होती थी उनको डिमिनिश किया जा रहा है एक पूरे एजेंडा के तहत, और जो कि बड़ा ही अफसोस का, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप ये जरूर सुने द वायर के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू है। द वायर की एक दूसरी स्टोरी है जी, और ये स्टोरी जो है दिस इज रिटन बाय SM साहू, और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो इंदिरा गांधी की जो 1975 की इमरजेंसी थी वो तो कुछ भी नहीं थी जो कुछ मोदी जी इस वक्त मुल्क के अंदर कर रहे हैं, अपने ऑपोजिशन के लीडर्स को जो हैं जैसे वो तंग कर रहे हैं। 1975 की जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेलों में डाला था, लेकिन 1977 में ये इमरजेंसी उठाई गई थी, इन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों से वापस लाया गया था और इन सबको इजाजत दी गई थी कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई थी। तो साहू साहब कहते हैं जी कि मोदी जी की रजीम जब से आई हुई है ये तो यही चल रहे हैं, पकड़ धकड़ अरेस्ट जो है, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी है 2024 के, ये जो अभी आने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन, इससे पहले जितने भी मेन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जिसके के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े और पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत होरेन, के कविता ऑफ भारत, राष्ट्रा सिमेट्री, इन सबको जो है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले जो हैं वो अरेस्ट करते जा रहे हैं, और कांग्रेस के साथ तो वो कहते हैं जी इन्होंने हद ही कर दी है, उनके तमाम के तमाम अकाउंट सीज कर दिए हैं ताकि उनको फाइनेंशियली क्रिपल किया जाए, और उनके ऊपर जो है बड़े करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं और बाकियों के ऊपर भी ये लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये काम जो था ये इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, इमरजेंसी हालांकि उसने लगाई थी लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट उन्होंने ना तो ब्लॉक किया था ना फ्रीज किया था। बीजेपी जो है उसका ये जो रुथलेस एक्शन है अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ये एक स्ट्रैटेजी शो करता है मोदी जी की जो ओपोनेंट्स के खिलाफ है कि उनको पेंट करो करप्ट, उनके बारे में कहो जी ये करप्ट है करप्ट है, उनके बारे में ये कहो ताकि लोग जो है बीजेपी को दें। और वो कहते हैं जी कभी भी ऐसे हुआ नहीं है पार्लियामेंट की हिस्ट्री में इंडिया के अंदर कि जितनी भी डायसेंटिंग वॉइसेस थी उनको निकाला जाता था पार्लियामेंट से, निकाला गया है और उनको जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ना आए, तो और उनको डराया धमकाया भी गया है। तो ये तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान की सेक्युलर हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है कि हमारे नेबर्स हमसे सीख रहे हैं, चलो कुछ तो इंडिया सारे घरों सीख रहे हैं, वैसे ऐसी तो सारा कुछ इंडिया तो सीखने सा, लेकिन कुछ तो इंडिया हमसे सीख रहा है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ चल रहा है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लूमबर्ग के अंदर जी एक रिपोर्ट आई है बड़ी जबरदस्त, और ये रिपोर्ट जो है ये एक इंटरव्यू है जो कि इंडिया के फॉर्मर जो रॉय जो उनका था RBI जो उनका है के जो गवर्नर थे रघुराम राजन साहब, उनसे इन्होंने ब्लूमबर्ग वालों ने एक इंटरव्यू लिया। आपको पता ही है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन साहब, ये टीच करते हैं फाइनेंस एट शिकागो यूनिवर्सिटी की जो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस है, बहुत ही हाई एंड किस्म का वहां पे ये इकोनॉमी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही है और बड़ी पॉलिटिशियंस ने हाइप क्रिएट कर दी है कि हमारा बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ है, बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। जिस वक्त तक इस मुल्क के अंदर एजुकेशन इंप्रूव ना की गई और स्किल्ड वर्कफोर्स ना पैदा की गई उस वक्त तक हिंदुस्तान ये जो बेनिफिट्स हैं अपनी यंग पॉपुलेशन के नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिशियंस हमको बिलीव करवाना चाहते हैं, खासतौर पर मोदी जी ये जो है वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी चंद ही सालों में बना लूंगा और डेवलप्ड कंट्रीज में इंडिया का शुमार होना शुरू हो जाएगा 2047 तक। उन्होंने कहा जी ये जस्ट एन आई वॉश है और ये बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कहा जी ये नॉनसेंस है, मैं बिल्कुल इस गोल को डिसमिस करता हूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता जब एक मिलियंस ऑफ किड्स जो हैं वो आपके हाई स्कूल की एजुकेशन तक नहीं ले सकते, दे आर आउट ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन एंड ड्रॉप आउट्स हैं और आपका जो ड्रॉप आउट रेट है वो इतना हाई है, और जो इंडिया के अंदर ग्रोइंग वर्कफोर्स है उसके बेनिफिट्स आप उस वक्त लेंगे जब उन लोगों को हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी, और आप जो कह रहे हैं बार बार कि 8% ग्रोथ है 8% ग्रोथ है, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकेगी अगर इस वक्त है भी, जो कि इन्होंने कहा कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और खासतौर पे जो मोदी जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े स्टेडियम, और जो अभी रिसेंटली इन्होंने एक चिप मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सेटअप करने की जो बात की है कि जिसके के लिए इंडिया ने कहा है कि हम $10 बिलियन उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, तो रघुराम राजन साहब का कहना है जी कि ये बिग प्रोजेक्ट्स जो हैं सस्टेनेबल नहीं है, हिंदुस्तान को अगर तरक्की याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर से लेकर तरक्की याफ्ता मुल्क अगर बनना है तो फिर आपको सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैन कुछ याद आ रहा है दोनों इसको सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, ये किसने कहा था पाकिस्तान को? आतिफ मियां ने, जो हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका के थिंक टैंक में हैं। तो उनको आने नहीं दिया गया था, उनको उनका नाम नॉमिनेट किया था इमरान खान साहब ने कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ये हमें बताएंगे। ही इज एन अमेरिकन थिंक टैंक आतिफ मियां, लेकिन जी वही हमारी छोटी सोच, ओ जी ये तो इस्माइली मुसलमान है, अहमदिया है ये, बल्कि अहमदी ये नहीं, इसको नहीं पाकिस्तान में बुलाना। पायन मतलब हद हो गई है, मां थोड़ी जड़ी है और डेथ बेड से पई हुई है, तो तुम कह रहे हो जी गोरा काला जीव हिंदू सिख डॉक्टर मेरी मां को नहीं देखेगा, सिर्फ मुसलमान डॉक्टर ही देखेगा। हद होगी थोड़े को यार ऐसे। अच्छा जनाब, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो बड़ी ही मार्शल आर्ट से भरपूर फिल्म है जिसको के बना रहे हैं अली अब्बास जफर, बड़े मियां छोटे मियां, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस ट्रेलर लॉन्च पे ना सिर्फ अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ सॉरी टाइगर श्रॉफ थे, बल्कि इसके अंदर जो है आलिया एफ और मानुषी चिल्लर जो है वो भी हैं, और रोनित रॉय जो है उनको आर्मी का चीफ बनाया गया है। और ये जो हैं दो लड़के अक्षय कुमार और टाइगर, ये आर्मी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बने हुए हैं जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े एनिमी के साथ फाइट करेंगे, जिसका नाम जो कि प्ले कर रहा है रोल पृथ्वीराज सुकुमारन। और वो जो हैं कह रहे हैं जी कि ये फिल्म जो है बहुत अच्छी है वैसे तो, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करेगी अजय देवगन की जो स्पोर्ट्स फिल्म आ रही है मैदान उसके साथ। लेकिन पायान अब देखने का है कि ये जो है कौन सी फिल्म आगे चलेगी, लेकिन लगता तो दोनों ही फिल्में हैं। अच्छा है। और जनाब गोविंदा, गोविंदा ने एक दफा कहा था मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, आज उन्होंने अनाउंस किया जी मैं फिर से पॉलिटिक्स में आ रहा हूं और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनको मैं फाइट करूंगा। इन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया है और इनको आज पार्टी के अंदर वेलकम किया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। और एक दफा इससे पहले गोविंदा ने पहले भी कहा था कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स है ये सिर्फ डिसेप्शन है, इसमें अच्छे लोग नहीं जाते। पायन फिर व्हाट इज दिस, व्हाई डिड यू ज्वाइन? बहरहाल जी ये आ गए हैं। और जी साड़ी बाजी, बाजी तो हूं आ गई है ना जी, उसने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, रोज बाजी की कोई ना कोई खबर होया करेगी। आज तो जनाब उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका गांधी हैं ये दोनों नेपो बेबीज हैं। अब आप सोच रहे होंगे नेपो बेबीज क्या हैं? नेपो का मतलब नेपोटिज्म, नेपोटिज्म बेबीज हैं, नेपो बेबीज हैं ये। वो कहती है कि ये दोनों वो कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेपोटिज्म का, जिसके के खिलाफ मैंने सारी जिंदगी जो है बॉलीवुड के अंदर फाइट किया है, और ये जो सिस्टम है इसने मुझे बेतहाशा टारगेट किया था और मैंने हमेशा उसके खिलाफ बोला था। ये ग्रुपिज्म है बॉलीवुड में और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो अब ये चला रहे हैं, ये उसी तरह डायनेस्टीज जो हैं उधर बॉलीवुड के अंदर भी चलती हैं, जिनके के मैं बड़ी खिलाफ हूं। ये गांधी और उसकी बहन जो है ये तो इस तरह से आते हैं जैसे ये मार्स पे रहते हैं और हिन्दुस्तान के प्रॉब्लम्स तो इनको पता ही नहीं है। और फिर इन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ शाहरुख खान और मैं जो है लास्ट जनरेशन इस मुल्क में रह गए हैं ऑफ बिग स्टार्स, और ये जो ओटीटी के ऊपर बड़े सितारे काम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ओटीटी पे बड़े सितारे नहीं बनते। हाय वे कंगना बाजी, आप कैसी बातें करती हो, कैसी बातें करती हो, अच्छी बनाओ तो पॉलिटिक्स में आ गया, आप सिर्फ जीत जाओगी यानी ऐसे। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है स्केड्यूल पूरे का पूरा पाकिस्तान टूर के लिए, और उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को होस्ट करेंगे फॉर लिमिटेड ओवर सीरीज इन नवम्बर, और इसमें वो खेलेंगे 3 ODIs और 3 T20s। जो ODI सीरीज है वो 4 November से मेलबर्न में शुरू होएगी और एंड होएगी 10 November को पर्थ में, और T20 सीरीज जो है 14 November से ब्रिस्बेन में शुरू होएगी और एंड होएगी 18 November को इन होबर्ट। पाकिस्तान जो है वो 11 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया को टूर करेगा। इन्होंने पहले 3 टेस्ट जो है खेले थे आपस में बेनो कादर ट्रॉफी में पर्थ में और सिडनी में और मेलबर्न में इन दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक, तो ये सारा स्केड्यूल आ जाया है। इसके अलावा जनाब जो पीसीबी है वो हेड कोच के लिए न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर ल्यूक रॉन्ची को कह रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइन करो। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि पीसीबी जो है ये प्रॉपर पैनल ऑफ कोचेस बनाना चाहता है, खासतौर पर ये जो 5 match T20 सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ जो कि अब शुरू होगी 18 April को, उसके लिए रॉन्ची को इन्होंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आप हमको ज्वाइन करें एज कोच, लेकिन इसने टर्न डाउन कर दी थी उस वक्त ऑफर। तो अब रॉन्ची कह रहा है कि मैं आई विल थिंक अबाउट इट, एंड देन आई वॉज, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे जो कोचेज फॉरन जो छोड़ के चले गए थे तो उनकी जगह जो है बहुत खाली है और उनको फिल करना है. इसके अलावा पीसीबी जो है कंसिडर कर रही है वापस से बाबर आजम 29 ईयर्स ओल्ड बड़े डायनेमिक जो प्लेयर है उनको फिर से नेशनल टीम का कैप्टन बनाने के लिए. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जो है वो ये सारी की सारी चीज जो है वो डिसाइड करेगी. वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन करेंगे हमारी टीम को, लेकिन एक नया स्किपर भी आ सकता है जब हम कमेटी में बैठ के बातचीत करेंगे. बाबर जो है उमरे से वापस आ चुके हैं और इनकी जल्दी मुलाकातें पीसीबी के ऑफिशियल्स के साथ होंगी इससे पहले कि ये जाएंगे एबटाबाद ट्रेनिंग कैंप काकुल के अंदर अटेंड करने के लिए जहां पे बाकी भी टीम जा रही है. इस सिलसिले में उन्होंने कोई बात तो नहीं की है, लेकिन ये ना तो अपना माइंड मेकअप किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुझे उन्होंने ये ऑफर की तो मैं बोर्ड के साथ बैठ के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करूंगा. ठीक है भाई. और जनाब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी के जो गोल्फ के मैचेस होते हैं जनाब, इनकी 10th मास्टर्स 1000 इवेंट जो है उसकी बिडिंग जो है इन्होंने ओपन कर दी है. पहले तो आपको पता है, हमने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया ने 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफर किए थे कि मेंस विमेंस टूर्स और जितने भी मैचेस यहां पे होंगे उसके लिए हम ऑफर कर रहे हैं. एटीपी को अब पड़ गया है लालच, एटीपी को पता चल गया है कि मिडिल ईस्ट में है बहुत सारे पैसे, इसलिए अब उन्होंने इसको खोल दिया है कि जी इसमें कतर भी अब बिड कर सकता है, यूएई भी बिड कर सकता है एंड इवन टेनिस ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर बिड कर सकता है. टेनिस ऑस्ट्रेलिया जरा हार जाएगा है जी, और यूएई ने तो जनाब हद कर दिया. यूएई तो अब दो बिड्स डालेगा, एक दुबई की तरफ से और एक अबू धाबी की तरफ से. और हम आपको बता दें कि ये टेनिस के बहुत ही हाई एंड मैचेस जिसमें दुनिया सारी के बड़े बड़े सितारे जो हैं वो ऑलरेडी दुबई में खेलते हैं और कतर में भी खेलते हैं, तो दुबई के लिए ईजी होगा, अबू धाबी के लिए और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के जरा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसको कि आप कहते हैं यूएफसी. यूएफसी के जो सीईओ है डाना व्हाइट, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि इस समर में हम सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट कराने जा रहे हैं. अपने एक्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम ना सिर्फ ये यूएफसी फाइट बल्कि और भी 4 बिग फाइट्स जो हैं यहां पे लेकर आएंगे जून 2022 को, और जो इसका पहला ओपनिंग मैच जो होगा वो फॉर्मर मिडल वेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर और अनडिफीटेड सुपरस्टार जो है कैमजत शिमेवो उसके साथ जो है ये होएगा उनके बीच में. तो सूदिया इज स्पेंडिंग बिग मनी ऑन
सूदिया, ठहरा
सूदिया जो है ना, सूदिया बहुत जो है इस स्पेंड कर रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर. हाँ जी, बस तो ये थी हमारी खबर है.
कैसे हो सकता है कि आप बगैर नीले जय के कपड़ों के दावा,
और नीले जय में वो मेरा एक तो दोस्त खेल रहा है ना गुरेरो छोटा मेरी तरह का कर्क और गुरेरो और एक वो है जिसका नाम है लिफाफा, वो क्या है, वो क्या नाम है लड़के का, लिफाफा नाम है एलिफाफा है कि फलाफा के लिफाफा
फलाफा.
हाँ फलाफा भाई, भाई ये कोई ना है उन, देखो ना मेरे जी जाहिल बंदा तो लिफाफा ही पड़ेगा ना उसनों.
हाँ बस लिफाफा करो, इसलिए करेक्ट करने आया ना आपको.
हाँ ठीक है फलाफा ओके. तो नीले जी आपका क्या तीर मार रहे हैं जी, दसो जरा.
आज पहला गेम है उनका सीजन का.
अच्छा
162 गेम खेलने उन्होंने.
अच्छा
आज
पहला, उसमें से 160 हारने.
पहला गेम जो है आज, पहले गेम के अंदर ये समझ लीजिए कि सातवीं इनिंग चल रही है अभी, टॉप ऑफ द सेवेंथ इनिंग.
अच्छा
टोरंटो ब्लू जेज आर लीडिंग 6-2 अगेंस्ट टैंपा बे.
और टैंपा बे हमें कोई उन्होंने थकेले अपने बच्चे भेज दिए होंगे नहीं है, वो बड़े 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 स्टार नहीं भेजे होंगे,
सारे बड़े स्टार ने.
अच्छा वो कहते हैं कि नीले जे जो है ना ये हमें कभी हरा तो सकते नहीं है, तो ये बच्चों को भेजो प्रैक्टिस होगी.
तो एनीवे
कोई बात नहीं, खुश हो जाओ 162 में से दो जीत जाएंगे आपके नीले जे.
सेवेंथ इनिंग चल रही है, 6-2 टोरंटो लीडिंग टैंपा बे.
ओके
एज अ फर्स्ट गेम ऑफ 162 गेम्स, गुड स्टार्ट जी.
अच्छा
अभी गेम खत्म नहीं हुआ है.
अच्छा.
दो इन बाकी, तीन इनिंग बाकी है, 7-8-9 तीन इनिंग बाकी है.
अच्छा अच्छा.
बट जब खुशी मिलती है तो खुशी को एंजॉय करें आप,
एंजॉय का मजा लें,
एंजॉय का मजा लें.
हाँ हाँ
चलिए. अच्छा, सही है साहब,
चलो ठीक है. मैं ये थी मेरी घर में. अच्छा जी, आपने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे हुए थे कि भाई ऑन्टारियो बजट सुनाओ, पायान उन दो दिन पुरानी खबर नहीं ऐसी सुना सकते. हमारी वेबसाइट पे जाएं www.eawaz.com, उस पर आप जाएं, आपको बजट की सारी डिटेल्स मिलेंगी, आप वहां पे पढ़ सकते हैं. ठीक है जी.
अच्छा जी, بقیہ کی باتیں ہوں گی کل انشاءاللہ. کل جو ہے انڈس ہاسپٹل کا فنڈ ریزنگ بھی ہے, 3:30 بجے شروع ہوگا وہ. ہم آپ سے درخواست کریں گے, اپیل کریں گے کل انشاءاللہ. تو آج فی الحال ان کو اجازت دے.
تھینک یو مائز بھائی, آئی ول سی یو ٹمارو. لیکن میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی, یہاں پہ جو کینیڈا کا ڈاکٹر ہے نا, اس نے ایسے لینس ڈالے آپ کی آنکھوں میں کہ بلی کی طرح چمک رہی ہیں اب آپ کی آنکھیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ,
واہ جی واہ, کیا بات ہے.
ٹھیک ہے جی,
ٹھیک ہے, اب آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آئے گا.
ڈاکٹر صاحب
اندھیرے میں بھی نظر آئے گا.
صاحب آج 18th روزہ,
آپ کا تو 17 ہی ہے نا ماجد بھائی.
ویسے ساروں کا 17th روزہ ہے.
نہیں میرا 18th ہے.
آپ 18 کہاں سے آگے؟
میرا تو بلکہ 21 ہے.
اچھا
میں تو 21st پہ چل رہی ہوں نا.
اچھا آپ
اکارڈنگ ٹو فارم 47. یا یا یا,
تو چلیے صاحب یہ میں آپ بتا دوں کہ 17th روزہ آج 28th آف مارچ, آج آپ افطاری کر سکیں گے 7:39 پر, 7:39 پہ آپ کریں گے, اور اس کے بعد پھر کل سحور کا آخری وقت 5:38 5:38 پہ. اور جی اور کیا بتائیں آپ کو, اگر آپ کا تعلق اہل تشیع سے ہے تو آج آپ کا روزہ کھلے گا 7:54 پر, اور کل صبح اگین 5:33 پہ آپ نے کھانا پینا روک دینا ہے. یہ تھی آج کی خبریں, بقیہ خبریں انشاءاللہ تعالی کل ملے گی آپ کو. چلیے صاحب لیے چلتا ہوں آپ کو میں اب پروگرام ان پروگرس ود زیشان احمد. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.
او ریئل کینیڈین سپر سٹور
یہ فارمیسی تے چھتی نال کیتا گیا ایک اسسمنٹ ہے. یہ 2018 تو ہن تک 80,000 تو ود نرساں بھی بھرتی ہے. یہ دیکھ بھال ہے جدوں اتے جتھے تہانوں اس دی لوڑ ہوے. ontario.ca/yourhealth تے جا کے وہ سارے طریقے ویکھو جنہاں راہی اسی تہانوں دیکھ بھال نال جوڑ رہے ہاں. اس دی ادائیگی اونٹیریو سرکار والوں کیتی گئی ہے.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773, ਯਾਨੀ 6472903773.
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 18-19 ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ. ਮਿਲੋ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 1410 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ. ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤੋ ਫ੍ਰੀ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਾਮ. ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਲਈ truckworld.ca ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਕੁਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ 18-19 ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ 519-6022-0660.
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ.
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 Kennedy Road, ਬ੍ਰਾਂਟਨ, 9058747171.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ. ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ. ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ. ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
In the heart of Pakistan, where half of the population are too poor to afford health care, they are calling out to Allah. They are calling for someone to heal them.
From primary care to cancer treatment, Indus Hospital will treat millions on your behalf.
Indus Hospital and Health Network provides all of these services free of charge.
Don't delay this, Ramzan. Give from what he has given you.
Donate today at IndusHospital.ca or call us at 289-667-3135.
लो जी जॉर्ज ब्राउन कॉलेज दा ओपन हाउस आ गया है टोरंटो डाउनटाउन दे तिना कैंपसा च हफ्ता 13 अप्रैल सवेरे 10 बजे तो लेके दोपहरे 2 बजे तक 250 तो वध प्रोग्रामा विच हर किसी लिए कुछ ना कुछ मौजूद है तुसी 13 अप्रैल नू कॉलेज दा फेरा ते लाओ ते साडे स्टाफ नाल मिलकर सारी जानकारी लवो ते रजिस्टर करो आज जी georgebrown.ca ते
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
Allah.